आमतौर पर ना हमें यही लगता है कि अगर किसी ठोस चीज को, जैसे किसी सॉलिड को हम गर्म करें, तो वो पहले पिघलेगा, तरल यानी लिक्विड बनेगा, और फिर गैस या वाष्प में बदल जाएगा।
हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में हम यही देखते हैं। पानी और बर्फ का उदाहरण ही ले लीजिए।
बिल्कुल, बर्फ पिघलती है, पानी बनती है, फिर भाप। लेकिन रसायन विज्ञान की दुनिया में ना कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो इस आम नियम को पूरी तरह से, मतलब एकदम पलट कर रख देती हैं।
जी, जिन्हें देखकर कोई भी हैरान हो सकता है।
सही का, कल्पना कीजिए कि एक ठोस पदार्थ बिना एक भी बूंद तरल बने सीधा वाष्प में बदल जाए, मतलब बीच का कोई स्टेप ही नहीं। इस जादू सी लगने वाली वैज्ञानिक प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन कहते हैं। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं।
बिल्कुल। और आज के हमारी जो ये गहन चर्चा है, उसका आधार कोई आम थ्योरी की किताब नहीं है।
हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प है। आज हमारे पास एक असली प्रयोगशाला मैनुअल है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब मैनुअल है जिसे डॉक्टर आनंद मुंद्रा ने तैयार किया है। ये धुले चैरिटेबल सोसाइटी के ARA कॉलेज ऑफ फार्मेसी धुले के BPharm सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए बनाया गया है।
जी, और श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि ये मैनुअल smilingpharmacy.com पर भी आसानी से पढ़ा जा सकता है।
तो आज का हमारा मुख्य मिशन ये समझना है कि ऊर्ध्वापातन असल में काम कैसे करता है, और ये देखना है कि इस तकनीक का इस्तेमाल करके अशुद्ध सैलिसिलिक एसिड को एकदम 100% शुद्ध कैसे किया जाता है।
या सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मैनुअल सिर्फ एक प्रयोग करने का तरीका नहीं बता रहा है।
तो फिर क्या है ये?
ये असल में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन, जिसे हम फेज ट्रांजिशन कहते हैं, उसके पीछे की थर्मोडायनामिक्स को समझने का एक शानदार जरिया है। ऊर्ध्वापातन न कोई जादू नहीं है, ये बहुत ही सटीक विज्ञान है।
सही कहा। जब मैं इस मैनुअल में सैलिसिलिक एसिड के शुद्धिकरण के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे लगा जैसे ये ऊर्ध्वपातन किसी लंबी दूरी की फ्लाइट की तरह है।
फ्लाइट? वो कैसे?
मतलब जैसे हम फ्लाइट में बीच के लेओवर को स्किप कर देते हैं ना, सीधे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं।
अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत ही सटीक
है ना? मतलब ठोस अवस्था से सीधा वाष्प में छलांग, तरल अवस्था वाले स्टेशन पर रुकना ही नहीं है। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा
है।
है,
जी, पूछिए।
इस प्रयोग के लिए खास तौर पर सैलिसिलिक एसिड को ही क्यों चुना गया? मतलब इसका फॉर्मूला C7H6O3 है, इसमें हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिल दोनों फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तो क्या इसके इस रासायनिक ढांचे का सीधा वाष्प बनने से कोई कनेक्शन है?
बहुत ही तार्किक सवाल है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि किसी भी पदार्थ की आणविक संरचना ही ये तय करती है कि वो गर्म होने पर पिघलेगा या सीधा वाष्प बन जाएगा।
अच्छा, तो सैलिसिलिक एसिड में ऐसा क्या खास है?
इसके अणुओं के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, खास तौर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार का क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। जब इसे ऊष्मा दी जाती है, तो इसका वाष्प दबाव यानी वेपर प्रेशर बहुत तेजी से बढ़ता है, और ऊर्ध्वपातन की शर्त ही यही है कि पदार्थ का वाष्प दबाव उसके गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही वायुमंडलीय दबाव के बराबर हो जाए।
और सैलिसिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट तो लगभग 158 से 159 डिग्री सेल्सियस होता है ना?
बिल्कुल सटीक, और वो इस ऊष्मा गतिक शर्त को बहुत अच्छी तरह से पूरा करता है। वैसे मैनुअल में ये भी बताया गया है कि कपूर, आयोडीन, एंथ्रेसीन, थैलिक एनहाइड्राइट और नैप्थलीन जैसे दूसरे यौगिक भी सब्लिमेशन कर सकते हैं।
हाँ, कपूर तो हम सब ने घरों में पूजा में जलते हुए देखा है। कैसे वो सीधा गायब हो जाता है?
बिल्कुल सही उदाहरण है।
लेकिन इस प्रयोग का लक्ष्य सिर्फ वाष्प बनाना नहीं है, बल्कि शुद्धिकरण है। तो वो जो अशुद्ध सैलिसिलिक एसिड में कचरा या मिलावट होती है, वो वाष्प क्यों नहीं बनती?
क्योंकि वो अशुद्धियां गैर वाष्पशील मतलब नॉन वॉलेटाइल होती हैं।
नॉन वॉलेटाइल का सीधा मतलब हुआ कि वो आसानी से भाप नहीं बनेंगी।
जी हाँ, उन अशुद्धियों का वाष्प दबाव उस तापमान पर न के बराबर होता है। तो जब हम अशुद्ध मिश्रण को गर्म करते हैं, तो सिर्फ सैलिसिलिक एसिड के अणु ऊर्जा लेकर आजाद हो जाते हैं और गैस बनकर ऊपर उठते हैं।
और अशुद्धियां?
अशुद्धियों के अणु भारी होते हैं, वो ठोस ही रहते हैं और बर्तन में ही पीछे छूट जाते हैं। अवांछित चीजों को वहीं छोड़कर सिर्फ काम के रसायन को बाहर निकाल लेना, ये बहुत ही शानदार तरीका है।
ये तो वाकई बहुत स्मार्ट तकनीक है। अब चूंकि हमें सिर्फ उस शुद्ध वाष्प को पकड़ना है, तो वाष्प का हवा में उड़ जाना सबसे बड़ा रिस्क होगा।
बिल्कुल, अगर वाष्प उड़ गई तो हमारी सारी मेहनत बेकार।
इसी वाष्प को कैद करने के लिए मैनुअल में लैब सेटअप को बहुत बारीकी से समझाया गया है। एक चाइना डिश है, ट्राइपॉड स्टैंड है, वायर गॉज है और डिश के ऊपर एक उल्टी रखी हुई कांच की कीप यानी फनल है।
जी, ये मानक सेटअप है।
लेकिन मुझे एक निर्देश पढ़कर थोड़ी उलझन हुई। मैनुअल कहता है कि उस कांच की कीप के ऊपरी खुले हिस्से पर एक रुई का टुकड़ा मतलब कॉटन प्लग लगाना है।
हाँ, ये बहुत जरूरी कदम है।
पर क्यों? मेरा मतलब है, अगर हमें वाष्प को बाहर जाने से रोकना ही है तो कीप को किसी रबर से पूरी तरह एयरटाइट सील क्यों नहीं कर देते? ये रुई जैसी छेद वाली चीज क्यों?
ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसका सीधा संबंध गैसों के भौतिक विज्ञान और लैब की सुरक्षा से है।
सुरक्षा? कैसे?
देखिए, वाष्प को तो बचाना है, लेकिन उपकरण के अंदर का जो दबाव है उसका संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है, जिसे हम प्रेशर इक्वलाइजेशन कहते हैं।
समझ रहा हूँ।
जब चाइना डिश गर्म होती है तो सिर्फ सैलिसिलिक एसिड ही वाष्प नहीं बनता, कीप के अंदर जो आम हवा है वो भी तो गर्म होके फैलेगी ना। चार्ल्स का नियम याद है? तापमान बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ता है।
अरे हाँ, तो अगर उस फैलती हुई हवा और नए वाष्प को बाहर निकलने की जगह न मिले तो क्या ये एक बंद प्रेशर कुकर की तरह नहीं हो जाएगा?
बिल्कुल, और ये स्थिति बहुत खतरनाक हो सकती है। अगर कीप पूरी तरह सील हो तो अंदर का दबाव इतना बढ़ जाएगा कि कांच का वो फनल धमाके के साथ टूट सकता है।
बाप रे, लैब में कांच टूटना तो बहुत रिस्की है।
इसीलिए रुई का प्लग एक इंजीनियरिंग चमत्कार की तरह काम करता है। रुई के रेशों के बीच बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं,
जैसे हमारे घरों के जालीदार दरवाजे होते हैं।
बिल्कुल वैसे ही। वो जाली गर्म और हल्की हवा को बाहर निकलने देती है, जिससे दबाव नहीं बढ़ता। लेकिन जो सैलिसिलिक एसिड के अणु हैं, वो आकार में बड़े होते हैं। जब वो रुई के ठंडे रेशों से टकराते हैं तो वो बाहर नहीं निकल पाते और वहीं फंसकर ठोस बन जाते हैं।
क्या बात है, मतलब रुई सिस्टम को सांस भी लेने दे रही है और हमारे कीमती रसायन को बाहर भी नहीं जाने दे रही।
एकदम सही समझे।
अब यहाँ आकर बात वाकई बहुत रोचक हो जाती है। उपकरण सेट हो गया, अब सबसे नाजुक काम आता है तापमान को कंट्रोल करना। मुझे ना ये खाना पकाने जैसा लगता है।
खाना पकाने जैसा?
हाँ, मतलब अगर हम तेज आंच पे खाना पकाएं तो वो जल जाता है। उसी तरह मैनुअल भी कहता है कि सिर्फ हल्की आंच, जेंटल हीट देनी है। अगर यहाँ बंसन बर्नर की डायरेक्ट हाई फ्लेम लगा दी जाए तो क्या होगा?
अगर तेज आंच का इस्तेमाल किया तो नतीजे विनाशकारी होंगे। रसायन विज्ञान में ना अवस्था परिवर्तन और रासायनिक अपघटन, जिसे डीकम्पोजिशन कहते हैं, दोनों के बीच एक बहुत पतली लकीर होती है।
डीकम्पोजिशन मतलब वो टूट जाएगा?
हाँ, जब हम हल्की ऊष्मा देते हैं तो वो सिर्फ अणुओं के बीच के बॉन्ड्स को कमजोर करती है, जिससे वो गैस बन जाते हैं। अणु खुद सुरक्षित रहते हैं, लेकिन अगर बहुत तेज ऊष्मा दी गई
तो ऊर्जा इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो कोवलेंट बॉन्ड्स को ही तोड़ देगी।
बिल्कुल, सैलिसिलिक एसिड का मूल ढांचा ही नष्ट हो जाएगा। वो वाष्प बनने के बजाय जलकर काले कार्बन या किसी और कचरे में बदल जाएगा।
ओहो, मतलब सारा खेल तापमान को डीकम्पोजिशन पॉइंट से नीचे रखने का है। इसीलिए वो वायर गॉज भी इस्तेमाल करते हैं ना, ताकि आंच एक ही जगह ना लगे और पूरी डिश पर बराबर फैले।
सही कहा, ताकि कोई हॉटस्पॉट न बने।
अच्छा, तो गर्म होकर वाष्प बनने की बात तो साफ हो गई, लेकिन इस पूरे चक्र का दूसरा हिस्सा भी तो है, वाष्प का वापस ठोस बनना। जब वो गर्म अणु ऊपर उठकर ठंडी कीप के अंदरूनी सतह से टकराते हैं तो वहां क्या होता है?
वाष्प का वापस ठोस बनना डिपोजिशन कहलाता है, और सच कहूं तो ये ऊर्ध्वापातन का सबसे खूबसूरत नजारा होता है।
मैंने इसकी कुछ तस्वीरें देखी हैं, ये बहुत चमकीले होते हैं।
हाँ, जब वाष्प के गर्म अणु ठंडे कांच से टकराते हैं तो उनकी गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी अचानक से गिर जाती है। वो अणु वापस एक दूसरे के पास खिंचते हैं और तुरंत एक व्यवस्थित क्रिस्टल लैटिस बना लेते हैं। इसे न्यूक्लिएशन कहते हैं, और फिर धीरे धीरे कांच की सतह पर एकदम शुद्ध सफेद और सुई के आकार के क्रिस्टल उगने लगते हैं।
सुई के आकार के क्रिस्टल, यही तो निशानी है कि पदार्थ अपनी असली ज्यामितीय संरचना में आ गया है। लेकिन मैनुअल में एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी है जो गलतियों से जुड़ी है।
जी, त्रुटि के स्रोतों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
हाँ, इसमें लिखा है कि जब तक उपकरण पूरी तरह से ठंडा न हो जाए, कांच की कीप को हटाने की कोशिश भी नहीं करनी है।
ये अनुभव का सीधा नतीजा है। अगर आपने फनल को तब उठा लिया जब वो गर्म है, तो जो वाष्प हवा में तैर रही है और अभी तक क्रिस्टल नहीं बनी है, वो तुरंत लैब की हवा में उड़ जाएगी
और आपका सारा प्रोडक्ट बर्बाद हो जाएगा।
बिल्कुल, इसके अलावा भी कई मानवीय गलतियां हो सकती हैं, जैसे अगर उपकरण गीला या गंदा था, या आपने बहुत जल्दी खुरच दिया या गंदे स्पैचुला का इस्तेमाल किया।
ये इस बात का सबूत है कि रसायन विज्ञान सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, इसके लिए बहुत ज्यादा धैर्य और सफाई की जरूरत होती है। तो इस सब का आखिर क्या निष्कर्ष निकलता है?
निष्कर्ष
मेरा मतलब है, हमने प्रक्रिया पूरी कर ली, ठंडे होने के बाद सुईनुमा क्रिस्टल भी निकाल लिए, लेकिन सिर्फ वो सफेद रंग देखकर तो हम विज्ञान में ये नहीं मान सकते ना कि ये 100% शुद्ध है। हमें कैसे पता चलेगा कि प्रयोग सफल रहा?
बहुत सही पॉइंट है। विज्ञान में हम सिर्फ आंखों देखी चीजों पर भरोसा नहीं करते, हमें गणित और मापन की जरूरत होती है। मैनुअल इसके लिए प्रतिशत प्राप्ति यानी परसेंटेज यील्ड निकालने को कहता है।
परसेंटेज यील्ड ये कैसे निकालते हैं?
इसका फॉर्मूला बहुत सीधा है। जो शुद्ध सैलिसिलिक एसिड मिला है उसका वजन लीजिए, उसे शुरुआत में लिए गए अशुद्ध सैलिसिलिक एसिड के वजन से भाग दीजिए और फिर 100 से गुणा कर दीजिए।
मतलब अगर हमने शुरू में 1 ग्राम क्रूड सैलिसिलिक एसिड लिया था और आखिर में हमें 0.8 ग्राम शुद्ध क्रिस्टल मिले, तो 0.8 को 1 से भाग देकर 100 से गुणा करेंगे तो ये 80% यील्ड हो गई।
बिल्कुल सही हिसाब लगाया।
लेकिन एक बात बताइए, जो 20% का नुकसान हुआ, क्या वो सिर्फ अशुद्धियों का वजन था या हमारा कुछ शुद्ध प्रोडक्ट भी बर्बाद हुआ?
ये बहुत बारीक बात है। 100% यील्ड मिलना प्रैक्टिकली असंभव होता है। उस 20% में बेशक अशुद्धियां शामिल हैं जो डिश में छूट गईं, लेकिन कुछ शुद्ध एसिड रुई में फंस गया होगा, कुछ कीप में रह गया होगा
और कुछ खुरचते समय गिर गया होगा।
हाँ, इसीलिए परसेंटेज यील्ड सिर्फ ये बताती है कि आपकी प्रक्रिया कितनी कुशल थी। ये अपने आप में शुद्धता की 100% गारंटी नहीं है।
तो फिर अंतिम गारंटी क्या है? हम कैसे प्रमाणित करें कि ये क्रिस्टल रासायनिक रूप से शुद्ध हैं?
इसके लिए हमें वापस उसी भौतिक गुण की ओर जाना होगा जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट।
ओहो, वो 158 से 159 डिग्री सेल्सियस वाला आंकड़ा।
जी हाँ।
लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि सिर्फ एक इतने छोटे से तापमान रेंज में पिघलना ही शुद्धता का अंतिम प्रमाण कैसे हो सकता है?
इसका जवाब मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेशन के सिद्धांत में है। शुद्ध सैलिसिलिक एसिड को पिघलाने के लिए एक बहुत ही सटीक ऊष्मा की जरूरत होती है जो ठीक 158 से 159 डिग्री के बीच होती है।
लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी अशुद्धि रह गई हो तो?
अगर क्रिस्टल में अशुद्धि का एक भी अणु फंसा है तो वह उस क्रिस्टल की प्राकृतिक संरचना को कमजोर कर देता है।
मतलब इंटरमोलिक्यूलर बॉन्डिंग कमजोर हो जाती है।
बिल्कुल, और क्योंकि बॉन्डिंग कमजोर हो गई तो उस अशुद्ध क्रिस्टल को पिघलाने के लिए कम ऊष्मा चाहिए होगी। वो पदार्थ 158 डिग्री से काफी पहले ही पिघलना शुरू कर देगा।
अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। अशुद्धियां क्रिस्टल को कमजोर कर देती हैं।
हाँ, और पिघलने की प्रक्रिया एक बड़े रेंज में खिंच जाएगी, जैसे 150 से 157 डिग्री तक।
इसका मतलब अगर हमारे सफेद क्रिस्टल मेल्टिंग पॉइंट मशीन में एकदम सटीक 158 से 159 डिग्री के बीच ही पिघलते हैं, न एक डिग्री कम न एक डिग्री ज्यादा, तो साबित हो गया कि हमारा प्रोडक्ट एकदम शुद्ध है
बिना किसी शक के। ये थर्मोडायनामिक्स की फाइनल मोहर है कि आपका प्रयोग 100% सफल रहा।
तो पूरी चर्चा को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि ऊर्ध्वपातन जैसी सरल सी भौतिक प्रक्रिया रसायनों को शुद्ध करने में कितना बड़ा रोल प्ले करती है। सही उपकरण, दबाव को संतुलित करने के लिए वो रुई का प्लग, हल्की आंच और आखिर में मेल्टिंग पॉइंट की गणितीय जांच।
जी, एक अशुद्ध रसायन को पूरी तरह से पारदर्शी और शुद्ध सुईनुमा क्रिस्टलों में बदल देना विज्ञान की सटीकता का बहुत बड़ा उदाहरण है।
बिल्कुल, और ये सिर्फ केमिकल्स को मिलाने का खेल नहीं है बल्कि पदार्थ के व्यवहार को समझने की कला है। पर इस एपिसोड को, या यूं कहूं इस चर्चा को खत्म करने से पहले, मैं श्रोताओं के लिए एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहता हूं।
वो क्या है?
हमने बात की कि ये तकनीक इसलिए काम करती है क्योंकि अशुद्धियां गैर वाष्पशील यानी नॉन वॉलेटाइल होती हैं, वो भाप नहीं बनती।
सही बात है।
लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी अशुद्ध मिश्रण में जो अशुद्धियां हैं वो भी ऊर्ध्वपातन का गुण रखती हों तो क्या होगा?
ये तो प्रयोगशाला के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती
है ना। मान लीजिए सैलिसिलिक एसिड के उस क्रूड मिश्रण में गलती से कपूर या नेफ्थलीन की मिलावट हो गई हो, ये दोनों तो खुद वॉलेटाइल हैं और आसानी से सब्लिमेशन कर लेते हैं।
हाँ, और ऐसे में जब हम चाइना डिश को गर्म करेंगे तो सैलिसिलिक एसिड के साथ साथ कपूर के अणु भी भाप बनकर ऊपर उठेंगे
और दोनों एक साथ उस ठंडे कान से टकराकर क्रिस्टल बन जाएंगे। तो हमें जो सफेद क्रिस्टल मिलेंगे वो दिखने में शुद्ध लगेंगे लेकिन असल में वो पूरी तरह अशुद्ध होंगे।
बिल्कुल, यह विचार इस बात पर जोर देता है कि किसी भी चीज को शुद्ध करने से पहले आपको सिर्फ अपने मुख्य रसायन को नहीं समझना है,
बल्कि उस कचरी ठेला का भाव को भी समझना है जिसे आप हटाना चाहते हैं। विज्ञान में सफलता अक्सर इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने अवांछित तत्वों को कितनी अच्छी तरह पहचानते हैं।
बहुत ही गहरा विचार है ये।
इसी विचार के साथ हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। अगली बार एक नए और विश्लेषणात्मक विषय के साथ फिर मिलेंगे।